Hello, people. Jatin Shivaraman here. So today we have technical Sapien on the Jatin Shivaraman show. He is one of the hackers. He is one of the greatest hackers that I know. Okay, we are talking for a very long time for this episode, and today he has got a time finally to do a podcast episode with me. And actually, he don't want to reveal his name. So for the name, we are using TS. Okay, so let's begin this episode. So hello, brother. How are you?
Hello, brother. How are you? I'm fine.
Okay. तो कैसा लग रहा है आप लाइक शो में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू पहली बात तो आने का.
थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड जस्ट काम ही कर रहा था और बुलाया तो आ गया थोड़ा निकाल के.
चलेगा चलेगा. थैंक यू ब्रदर. तो आपने सबसे पहले आपकी लाइक अगर आप ऑडियंस को बता दो कि आपकी जर्नी क्या थी, लाइक हाउ यू गेट स्टार्टेड, लाइक आपकी एज क्या है, मतलब बेसिकली आपको आपके बहुत सारे ऑडियंस जैसे आपकी हो गई या बहुत सारे लोगों आपके बारे में पता नहीं है, तो आपकी एज क्या है, आप क्या कौन सी कंपनी में काम करते हो एंड कैसे आपकी जर्नी रही अभी तक की, आपको हैकिंग का आइडिया स्टार्ट
एक्चुअली
करता है.
इन 2018 मेरे सामने एक यूट्यूब वीडियो आया था जिसमें ये लिखा था कि हाउ टू हैक एक्चुअली हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर्स बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट.
ओके.
तो उस वक्त तो मेरे को हैकिंग का एच भी नहीं पता था, तो मैं उसको देखिए काफी क्यूरियस हो गया कि ये होता कैसे है, मैं भी देखता हूँ. तो वो जस्ट मैंने खोल के देखा, ट्यूटोरियल देखा, फिर अपने एक दोस्त को बोला कि तो अपना आईपी एड्रेस पता, जल्दी आईपी कॉन्फिग करके मेरे को ऐसे करना है, देखना है. तो वैसे वो ट्यूटोरियल फेक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो क्यूरियसिटी मेरी रियल थी और उसने मेरे को कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर दिया कि मेरे को देखना है कैसे होता है. तो उस चीज को लेके मैं बैठ गया. और एक सही बात ये रही कि मैंने स्टार्टिंग में मोस्टली हैकर्स क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं वो ना काले पे उतर आते हैं कि काले लिनक्स यूज करना शुरू कर देते हैं या पैरट यूज करना
यस
शुरू कर देते हैं. या तो लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहां पे पहुंचा ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, उनसे पहले ही मैंने फोन से फोन यूज करना शुरू किया, अपने लैपटॉप से यूज करना शुरू किया, अपने फोन को रूट कर लिया. तो बेसिकली मैंने फिजिकल टूल्स से स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उसके चलते मेरे को ना काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, स्निपिंग कैसे करते हैं, स्कूपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होती चली गई. तो फिर जैसे ही मैं काले लिनक्स पे आया और फिर कमांड्स पे आया, टर्मिनल यूज किया, तो फिर लगने लगा कि यार ये चीज ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम ऑलरेडी कर रहे थे, बस यहाँ पे कोड से कर रहे हैं उस चीज को. तो एक काफी फेमिलियर सा एनवायरमेंट बन गया था. और मेरे ख्याल से अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है हैकिंग में तो उसको पहले फिजिकल टूल्स ट्राई करने चाहिए, उसके बाद वो लिनक्स वगैरह पे कहीं उतरे. खैर काले लिनक्स में आगे बहुत एडवांस टूल्स हैं जिसको यूज करना है, बहुत अच्छे हैं पेन टेस्टिंग के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं. तो यही रहा कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट 1 साल में इसके, 1 साल क्या शायद 1 साल से भी कम होगा कि मैं इसको करता रहा धीरे धीरे. हाँ मैंने एक बग बाउंटी भी इसका साइड होता है, मैंने बग बाउंटी कभी नहीं किया और काइंड ऑफ मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि मतलब किस वे में जाना चाहिए. बस मेरे को डिफरेंस पता था ब्लैक हैट और व्हाइट हैट ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जिस वे पे मैं जा रहा था मेरे को नहीं पता था कि ये कौन सा वे है. और अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक हैट ही था,
लेकिन
वही मैं लोगों के फोन हैक कर रहा था, वेबसाइट्स को डीफेस करना शुरू कर रहा था, छोटी छोटी वेबसाइट्स को करता था और एसक्यूएल अटैक कर रहा था. तो मेरे को पता नहीं था, नूब था मैं, कुछ भी जो भी मिला कुछ सीखा एकदम उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ये भी नहीं देख रहा कि शायद कोई मेरे को बाद में पकड़ सकता है.
ओके.
फिर धीरे धीरे मैंने सिक्योरिटी मेजरमेंट्स मेजर्स प्रिकॉशंस लेने शुरू किए, प्रॉक्सीज यूज करना शुरू की, फिर टोर पे आया. फिर जैसे अगर कोई टोर यूज करता है तो डार्क वेब डीप वेब 1 महीने में घूम ही लेता है.
ओके.
फिर वहां से डार्क वेब भी आ गया. फिर हैकिंग ही मैं कर रहा था तब तक पेज नहीं बना था मेरा. फिर इट वॉज इन आई थिंक जनवरी में, हाँ जनवरी में मैंने अकाउंट बनाया था. जनवरी 2018.
ओके 2018. ओके ओके
2018. हाँ तब मेरा शायद 29 जनवरी को पहला पोस्ट आया था और सबसे पहला पोस्ट मेरा वही था, एक ग्रेड था.
ओके.
और उसके बाद से मैंने अपनी जस्ट अपनी पिक्स डालनी शुरू की थी, मास्क वाली और वो. तो जस्ट सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा था, जस्ट एक जैसे उर्बेक्स कम्युनिटी होती है जिस उनके तरह मैंने डालना शुरू कर दिया फोटोज. तो लोग उनको काफी लाइक करने लगे. उस वक्त मैं आर्डिनो पे काम कर रहा था, रास्पबेरी पे काम कर रहा था, तो कभी कभार उनके पिक्स डाल देता था तो लोग बहुत लाइक करने लगे. मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, अकाउंट धीरे धीरे अपना ग्रो करने लगा. उस टाइम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम इतनी बेकार भी नहीं थी, बेकार तो ऐसे नहीं है, अब ज्यादा हो गया. तो अकाउंट बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा कि जो मेरे को आता है क्यों ना वही मैं इंस्टाग्राम पे डालूं, तो शायद ग्रो और तेज करेगा। तो बस वहीं से थोड़ा सा क्लिक किया दिमाग में कि चलो मैं थोड़ा हैकिंग कंटेंट डालना शुरू करता हूँ। तो फिर
ओके
मैंने ना खुद के ट्यूटोरियल्स डालने शुरू किए, मैं रिकॉर्ड करता था स्क्रीन रिकॉर्डर से कुछ ना कुछ वो डालने शुरू किए, कुछ स्टेगनोग्राफी के भी मैंने ट्यूटोरियल्स डाले थे। फिर इंस्टाग्राम ने वो 3-4 ट्यूटोरियल डिलीट कर दिए, तो मैं समझ गया कि भाई इंस्टाग्राम पे मैं हैकिंग का नहीं डाल सकता हूँ,
ओके
मतलब ज्यादा डीप में सीधा नहीं डाल सकता हूँ, थोड़ा इनडायरेक्टली घुमा फिरा के डाल सकता हूँ। तो ये थोड़ा एक दिक्कत आती है अगर तुम्हारे पास एक हैकिंग या सिक्योरिटी से रिलेटेड अकाउंट है, तो थोड़ा कंटेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट ना करते। तो
ओके
फिर जैसे ही मैं हैकिंग में था, हाँ इंस्टाग्राम जैसे बना तो साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैं आ गया। मैं शायद से इंस्टाग्राम पे मेरे 10K हुए होंगे जब, तो मैं टेलीग्राम पे उस वक्त आ गया था, और टेलीग्राम पे हमारे ऑलमोस्ट 11K मेंबर्स हो चुके थे
ओके
इसके बाद। और फिर जब टेलीग्राम पे आया तब मेरे को ये क्रैकर्स और कार्डर्स वगैरह वहां पे मिले,
ओके
तो
बराबर
मेरी क्यूरियोसिटी जानने की यार ये क्या होता है कैसे करते हैं। तब तक मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा था, बस मेरे को पता था यहाँ पे वेब सीरीज आती है ऐसे ऐसे कुछ है, मेरे को मूवीज और वेब सीरीज का कोई शौक नहीं है।
ओके ओके
देन हाँ, तो कुछ जैसे चैनल्स हमारे जो वेब टेलीग्राम चैनल होते हैं उसमें कुछ एडमिन्स बन जाते हैं, तो मैंने कुछ को एडमिन्स बनाए थे ताकि चैनल थोड़ा चैनल में थोड़े पोस्ट चलते रहे, स्मूथली चलता रहे। तो वो
ओके
थोड़ा क्रैकिंग वगैरह के पोस्ट डालते थे कि हम क्रैकिंग सिखा रहे हैं, तो मैंने देखा ये क्या चीज है, तो मैंने खुद से देखना शुरू किया, तो पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे बात है, नेटफ्लिक्स को क्रैक किया जा रहा है, स्पॉटिफाई को क्रैक किया जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने ऑटोमेटिकली वो चीजें सीखनी शुरू कर दी, और काफी हद तक क्रैकिंग हो गया। फिर तो इतना हो गया कि कोई बोलता था भाई क्रैक एक नेटफ्लिक्स चाहिए, मैं रुक तू 2 मिनट अभी निकाल के देता हूँ तेरे को, ये
अच्छा
तो
ओके
हो
ओके
गया था। फिर
हाँ मैंने ये तो बहुत देखा है
नेटफ्लिक्स,
लाइक टेलीग्राम पे बहुत से लोग ये सेल करते हैं। मैंने खुद भी यूज किया एक दो बार, बट करना तो नहीं चाहिए। ओके
भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले शायद टेलीग्राम अच्छा रहा होगा, अब टेलीग्राम सब रिपर्स से भरा हुआ है, स्कैमर्स रिपर्स सब ये भरे हुए हैं,
हाँ
टेलीग्राम
मैंने
पे डील
यस
मत
यस
करना।
ओके ओके नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, टेंशन नहीं है।
हाँ वो बाकी
ओके
कोई भी
ओके
हो तो उसको भी सजेशन देना टेलीग्राम पे
ओके
नहीं करना।
तो ऑडियंस जो आप सुन रहे हो देख
और
लो, ठीक है, आपको यूज नहीं करना
हाँ
है।
भाई, और टेलीग्राम पे कोई भी डील वगैरह कोई भी मत करना, बहुत बड़े बड़े स्कैमर्स होते हैं वहां पे। इट
मेन तो बेसिकली
इज वन
जो
ऑफ द मेन रीजन,
हाँ
या इट
हाँ
इज वन ऑफ द मेन रीजन आई लेफ्ट टेलीग्राम।
ओके
तो फिर क्रैकिंग आई, क्रैकिंग के साथ साथ कार्डिंग भी हो गई, लेकिन वही था कि तब तक मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी कि क्या हो रहा क्या करना है, बस मेरे को मजा आ रहा था करने में, क्योंकि मैं बहुत नया सीख रहा था हर चीज, और हर चीज में मजा आ रहा था। बस ये पता कि नेटफ्लिक्स है उनकी सिक्योरिटी है, चलो तोड़ देते हैं देखते हैं क्या होता है,
ओके ओके
मतलब जो भी चीज मिल रही थी सिक्योरिटी की ऐसी तैसी किए जा रहे थे हम, मजा आ रहा था। ग्रुप था काइंड ऑफ पहले हमारा, स्टार्टिंग में हमने एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, इंस्टाग्राम
ओके
जैसे शुरू हुआ तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए।
ओके
तो अब व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेशन होती है मेंबर्स की, तो हमने हमारे 5 व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, फिर उनको संभालने में थोड़ा दिक्कत आने लगी, तब हम टेलीग्राम पे जाके स्विच हुए कि सारे
ओके
मेंबर्स एक जगह आ सकते हैं। तो
ओके ओके बराबर है।
एक ग्रुप था जो मतलब हमारा क्रैकर्स वगैरह का धीरे धीरे,
अच्छा
तो
मीन्स आप क्रैकिंग
फिर ऐसा
करते
हुआ
हैं।
कि हाँ जो मतलब कोई कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा
ओके
है, कोई ऐसे कर रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तो हर हफ्ते पैच हो जाते हैं, पहले 1 महीने बाद पैच होता था कोई, अब
ओके
तो
ओके
नेटफ्लिक्स की एमएल एल्गोरिथम इतनी अच्छी हो गई कि हर एक हफ्ते में एक जो भी आइडिया होता है तुम्हारा पैच हो जाता है,
ओके
तो
ओके
बेकार है क्रैक वगैरह लेना भी।
लाइक मैंने
तो
भी
फिर
पहले स्टार्टिंग में मैं भी हैकिंग में क्यूरियस था, तो मैंने भी लाइक एंड्रॉइड फोन वगैरह एक किए एंड उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स का भी किया था। उस टाइम पे शायद से बहुत इजी हो जाता था, बट इस टाइम पे थोड़ा
बहुत
सिक्योरिटी
आसान था,
स्ट्रांग हो गई अभी
जब
बिकॉज
तुम सीसी ले आओ बिन पता चल जाएगी, तुम्हें सीसी जनरेट कर लोगे, वीपीएन लगा के क्रैक हो जाएगा,
ओके ओके थोड़ा
बहुत
ये
ध्यान
आप
रखें।
एक्सप्लेन कर दो जो टर्म्स आप बता रहे हो, कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है।
अच्छा, तो ऐसा होता था कि जब हम नेटफ्लिक्स क्रैक करते थे तो एक बिन होता है जो पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां के क्रेडिट कार्ड जो होते हैं
डन
उनकी एक बिन होती है पर्टिकुलर लोकेशन की, तो
ओके ओके
वो जो बिन होता है वो कार्ड के स्टार्टिंग का 6 नंबर होता है, तो बस हमें वो
समझा
बिन पता करना होता है कि ये बिन हमें मिल जाए। तो पता चला जैसे हमें ब्राजील का बिन मिल गया है कि ब्राजील में ये बिन है, तो हमें वो बिन मिला और हमने फेक सीसी जनरेटर से वो सीसी जनरेट कर लिया, एक
ओके
सीसी मिल जाता है उसी बिन का, और वो सीसी लाइव होता है कुछ टाइम के लिए, और वो मास्टर कार्ड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वो,
ओके
और फिर हम उसको यूज करके उसको डालते थे। तो पहले तो सिक्योरिटी इतनी बेकार थी कि बस तुम सीसी डालो और पीछे का कोड डालो एक्सपायरी डालो और नाम कुछ भी भर दो, एड्रेस कुछ भी भर दो, और ना वो हो जा एक्सेप्ट कर लेता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या कर दे कि अभी तुम्हें वो तो डालना ही होता है, प्लस तुम्हें नेम भी डालना होता है उसका, मतलब जो बंदा है उसका नाम डालना होता है, प्लस एड्रेस भी डालना होता है। तो अभी नाम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम तो किसी का भी हो सकता है और अकाउंट किसी का हो सकता है, लेकिन जो एड्रेस होता है ना, वो उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एड्रेस किस लोकेशन पे आ रहा है, क्योंकि एड्रेस में पिन भी डालना होता है। तो वो पिन चेक करते हैं, और फिर ना पिन से वो चेक करते हैं कि जो बिन है, जिस लोकेशन की बिन है, क्या उसके अंडर में ये पिन कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर ये वेरीफाई नहीं होता है ना, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई हैकर है या क्रैकर है जो उसको छेड़खानी कर रहा है। वो तुरंत के तुरंत वो अकाउंट बैन कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह अमेजन ने, नेटफ्लिक्स ने बढ़ा दिया। अभी अमेजन प्राइम भी ये काफी दिक्कत करता है। अमेजन प्राइम हम टाइम लेता है, इसके अंदर भी 3 इंटरनल वेरिफिकेशन चलती है, तो बहुत आगे का प्रोसेस है। तो यही था कि हम
करेगा, मतलब बेसिक
हाँ
प्रोसेस क्या हो गया, लाइक हम लोग बिन यूज करके हैक कर सकते थे पहले, बट अभी हम लोग नहीं कर पाते।
हाँ अभी हमें एड्रेस भी ऑलमोस्ट वही चाहिए होता है। अभी काफी चीजें हो गई हैं। अभी ना वो अभी अभी भी तक पता क्या होता है कि अभी ना वेरिफिकेशन होने में टाइम लेता है।
मीन्स कोई भी
एक्चुअली जो
नोब,
फीस
जैसे
भी
मतलब जो भी स्टार्टिंग कर रहे हो या कुछ भी, जैसे हम मतलब कोई जो भी जैसे 15-16 साल के लोग हो गए, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे बेसिकली, मतलब उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इतना, तो उन लोग कर नहीं पाएंगे। बाकी जो एडवांस हैकर्स हो गए वो कर लेंगे फिर भी।
हाँ करने वाले तो कर रहे हैं, और मैंने वो भी क्रैकर देखे हैं जो 14-14-15 साल के हैं, वो भी अच्छे अच्छे क्रैकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके
नहीं,
हैं।
मैं जो स्टार्टिंग कर रहे, बिगिनिंग
और
कर रहे।
हाँ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा होगा, 1 महीने में वो सीखेंगे तो मस्त उनको भी आ जाएगा। और अभी क्या हो गया कि अभी ना जो ये नेटफ्लिक्स और अमेजन है ना, अमेजन ने तो क्या करता है कि वो रोक देता है वहीं पे और फिर वेरीफाई करता है। अभी सीसी का क्या होता है ना, जो हम सीसी जनरेट करते हैं, ये लाइव होते रहते हैं और फिर डेड होते रहते हैं। तो इनका भी एक पीरियड होता है कि ये इतने टाइम तक ही लाइव रहेंगे, और अमेजन उसी टाइम का वेट करता है कि क्या ये सीसी सही में लाइव, मतलब असली वाला सीसी है। क्योंकि तो जो हम जनरेट करते हैं ना उसका, वो शायद ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट तक लाइव रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। क्योंकि ऐसे तो हजारों सीसी जनरेट होते रहेंगे और डेटाबेस भर जाएगा जो सीसी जनरेट रहे, तो उनको डेड करने पड़ते हैं सीसी। तो वो जो सीसी जनरेट होता है ना, तो अमेजन उसको चेक करता है कि क्या ये सीसी 1 घंटा 2 घंटे तक लाइव रहता है। अगर लाइव रहता है तो मतलब ये असली क्रेडिट कार्ड है, अगर नहीं रहता तो मतलब ये जनरेट किया हुआ है। तो अब ये ऐसे भी वेरीफाई करने लगे हैं, और इसलिए जो सीसी वाली ट्रिक्स भी आई ये भी सेल होने लगी है हमारी। और नेटफ्लिक्स क्या करता है, नेटफ्लिक्स ऐसे दिखाता नहीं है कि मतलब वो ऐसे चेक कर रहा है, वो अकाउंट बना के दे देगा तुम्हें, लेकिन वो इंटरनल वेरिफिकेशन करता रहता है, और जब उसको लगता है कि ये सीसी डेड हो चुका है तो वो फिर तुम्हारा अकाउंट डिसेबल कर देगा। और फिर लोग कहते हैं ट्रिक पैच हो गई है, तो ये भी थोड़ा एक डिफरेंस है। वो ट्रिक पैच नहीं हुई है, नेटफ्लिक्स ने तुम्हारा सीसी को पकड़ लिया है कि वो नकली है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं।
अच्छा, तो मतलब ये हो गया बेसिकली कार्डिंग से लेके।
हाँ
हम लोग ये मोटिवेट नहीं करें आपको कि आप जाके करो
नहीं
ये।
नहीं नहीं भाई,
ओके,
बहुत सही है,
समझ
बहुत
लो
गलत
वही
काम है ये। हाँ मैं कह
वही।
रहा हूँ ये ब्लैक हैट हैकिंग में ही आता है, और इसको मत करो तो ही सही है, पकड़े जाते हो ना तो बहुत बुरा होता है। मैं वही अभी अपने ग्रुप की बात कर रहा था अभी, तो उसी पे कंटिन्यू करने वाला था कि जो हमारा ग्रुप था जो सब ट्रैकिंग वगैरह देखता था, कार्डर्स थे दो, क्रैकर्स थे और एक मैं था। तो ऐसे ही हुआ कि होस्ट, जैसे मतलब स्टार्टिंग में ना एक ट्रिक आई थी पेटीएम की, तो उसमें क्या हो रहा था कि सीसी सीसी से तुम इंटरनेशनल सीसी था और तुम मतलब बाहर का था कहीं का, और तुम उससे ना अपने पेटीएम अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते थे, और पेटीएम भी अलाउ कर रहा था। तो मैंने देखा वो बंदा, उस बंदे ने एक बार में 20,000 रुपए ऐड किए। मैंने बोला ठीक है, फिर उसने और 20,000 ऐड किए। मैंने कहा ये ज्यादा हो रहा है, तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसे कौन सी ट्रिक यूज कर रहा है। उसने बताया ऐसे ऐसे है, तो मैं समझ गया कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू बारी बारी बार बार करेगा ना, तो जहां से पैसे आ रहे हैं उनको भी डाउट हो जाएगा, और जहां से पैसे पेटीएम में फटाफट आ रहे हैं उनको भी डाउट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है ना कि जब किसी क्रैकर को नई नई ट्रिक पता चलती है ना, तो बहुत जोश में आ जाता है। इस तरह हैकर को भी कोई नया नया ट्रिक पता चलता है ना, तो बहुत जोश में आता है। तो उसने बिना सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लिए ऐसे करता रहा, और तुरंत उसके पास पेपर तो पेटीएम से आ गया कि आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है कोई मैलिशियस एक्टिविटी के कारण। और फिर जिस तरफ से सीसी आया था, उधर से भी एक ईमेल आ गया साइबर क्राइम पुलिस का, और उसके बाद वो फंस गया। अच्छा अच्छे वाला। तो ये शायद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल, एक साल पहले की बात है शायद, जब ट्रैकिंग हम सब ने छोड़ दी थी।
अभी
तो
उसका क्या
ये
हाल
रीजन था कि जब वो भी जेल में है।
ओके एंड एज क्या थी उसकी लगभग?
सर 16 से 17 का होगा सर, तो
देख रहे हो 16 17 का ही है, तो ध्यान रखो भाई, अगर जो भी
नहीं
16 इयर्स 17 इयर्स के
वो
देखते
नहीं
हो।
देखेंगे नाबालिग या नहीं, वो नाबालिग वगैरह नहीं देखेंगे, उस पर अच्छा खासा जुर्माना लगा है। शायद उसने जितना स्कैम स्कैम किया था ना टोटल, जो उसका निकाला गया पिछला कि इतना इतना स्कैम किया, तो शायद उसको 15 से पता नहीं 15.समथिंग लाख देना है उसको,
देख रहे
इतना
हो,
फाइन लगाया उसके ऊपर।
और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है।
बहुत कोई छोटा अमाउंट नहीं है
और मेन तो जो
उसने, शायद
लाइक
उससे भी कम का किया होगा, शायद 10 लाख तक कभी नहीं किया होगा कभी, लेकिन ओबियसली डबल ट्रिपल फाइन देना पड़ता है जब ऐसी चीजें करते हैं।
अच्छा,
प्लस
जब तक
अगर
वो फाइन पे नहीं
कंपनीज
करेगा।
अपने उसपे लीगल वे में तुम्हें देने आए तो तुम्हें बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, वो तो कंपनीज ने नहीं किया है, लोगों ने जो कंप्लेन किया है उस पर साइबर क्राइम पुलिस आई है,
ओके
अगर कंपनीज करने पाए तो बहुत फाइन देना पड़ेगा,
ओके
तो ऑब्वियसली ये बेकार तरीका है, अच्छा नहीं है। फिर भी हम तो जो करते थे हम तो लोगों में बांटते थे उसको, मैं क्या बांट दिया, मैंने खुद कभी नेटफ्लिक्स यूज नहीं किया,
ओके
इट्स लाइक अ ड्रग डीलर, कभी खुद ड्रग यूज नहीं किया, दूसरों में बांट दिया।
ओके ओके ठीक
हाँ तो इसी तरह रात को कार्डिंग क्रैकिंग धीरे धीरे हमने धीरे क्या उस टाइम के बाद से हमने छोड़ ही दी, अभी भी लोग आते रहते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स क्रैक करते दे दो या कार्डिंग कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन नहीं अभी पता चल गया कि वो गलत है तो नहीं करने का है अभी। हैकिंग
एंड
हैकिंग भी मैं, हाँ
एंड आपकी एज क्या है अभी करंटली?
अभी तो I'm 20।
ओके ओके चल, तो देख सकते हो,
तो
तो यही हो गया, मतलब आपको बेसिकली ये सब चीजें अप्लाई नहीं करनी है। हाँ, अगर आप मजे के लिए आप सीख सकते हो, बट इनको कैसे अप्लाई मत करो, किसी का कुछ नुकसान नहीं करो। ऑफ कोर्स यार, 20,000 कोई
नॉलेज
नॉर्मल
के लिए
अमाउंट नहीं है।
सर,
हाँ
नॉलेज के लिए गेट अ गुड नॉलेज, नॉलेज के लिए गेट अ गुड नॉलेज, ट्रैकिंग देखो कैसे हो रहा है, प्रोसीजर देखो, वर्किंग देखो कैसे हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लो, टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तुम फंस ना जाओ कहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हैकिंग में भी सब पता होना चाहिए, लेकिन हैकिंग में भी ब्लैक हैट वाली तरफ मत चले जाना, क्योंकि जो ब्लैक हैट में जाता है वो डार्क वेब पे डीप वेब पे जाता ही है, और डार्क वेब डीप वेब पे बहुत अच्छे खासे हैकर हैं, सीरियसली यहाँ के हैकर्स कुछ भी नहीं है जो डार्क वेब वाले हैकर हैं,
ओके एंड डार्क वेब
उनसे तुम
बेसिकली क्या होता है,
कॉन्टेक्ट
मतलब अगर ऑडियंस को हम लोग बताए तो
कर।
डार्क
हाँ
वेब
वैसे डार्क
बेसिकली,
वेब,
हाँ हाँ मतलब
ओके डार्क
बेसिकली
वेब
क्या होता
तो
है एंड कैसे पहुंचा जा सकता है, तो
एक्चुअली
जाके
उसको हम
मतलब।
टोर से एक्सेस कर सकते हैं,
ओके
डार्क वेब डी वेब को हम टोर से एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब इज लाइक अ सरफेस वेब फॉर इलीगल थिंग्स, उसे इलीगल नहीं होता, काफी चीजें लीगल नहीं, मतलब अच्छी भी होती है लोगों के लिए, फ्री में कंटेंट मिलता है, काफी चीजें लीक्स मिलते हैं काफी सारे, लेकिन इलीगल चीजें भी वहाँ पे होती है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती रहती है, ड्रग्स मिलते हैं, वीपन्स मिलते हैं, तुम किसी हैकर को रेंट कर सकते हो मारने के लिए, तुम किसी हिटमैन को रेंट कर सकते हो किसी को मरवाने के लिए, तो ये
ओके
थोड़ी गलत चीजें भी होती हैं और अच्छी चीजें भी होती हैं वहाँ पे। प्लस
ओके
वहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन हार्डली कहीं मिलेगा, यहाँ पे तो टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल भी जाता है, एक हैकर
ओके
के लिए ना टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल होता है,
ओके
ये एक फैक्ट है,
ओके मतलब
टू स्टेप जितने स्टेप वेरिफिकेशन आएंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम क्रैकिंग में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनल 3 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि
ओके
हम एक स्टेप तो में क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन उस आगे 2 स्टेप भी तो है ना, उनका हमें पता ही नहीं है, तो
बराबर है।
ये स्टेप वेरिफिकेशन हैकर्स के लिए थोड़ा नुकसान होता है।
ओके
तो जो हमारा सरफेस वेब है उसके कंपेरिजन में डार्क वेब डीप वेब बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पहले
ओके
जो स्टैटिस्टिक्स कहते थे वो कहते थे कि 2% सरफेस वेब है, अब ये हो गया कि 5% सरफेस वेब हो गया, बाकी का सब डार्क वेब और डीप वेब है,
अच्छा, मतलब जो
तो
हम
अगर किसी को लगता है
लोग
उसे
क्रोम वगैरह यूज करते हैं वो सिर्फ 5% है।
5% है इंटरनेट का,
अच्छा, ये
बाकी का
फाइव
उधर
परसेंट
चल
है
रहा है सब।
अरे बाप रे,
हाँ
मैंने ये मेरे को भी नहीं पता
ये जो अपन फेसबुक यूज कर रहे हैं उनका भी फेसबुक है, और पता है उसका यूआई भी सेम है, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ब्लैक बुक नाम रखा है उसका, लेकिन यूआई सेम है, फेसबुक वगैरह नाम भी सेम रखा है फेसबुक,
था। अच्छा,
बस उसको ब्लैक बुक बोलते हैं।
तो ये लोग एक्सेस कैसे कर पाते हैं, मतलब ये आपने बोला टॉर में जाने का और डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ऐसे होता है कि मतलब इसके भी कोई सिस्टम्स होते हैं?
टोर का एक ये तो सॉफ्टवेयर आ जाता है, तुम वो इंस्टॉल कर लो विंडोज में, या फिर काली से टोर यूज कर लो। टोर का क्या बेनिफिट होता है कि इसमें ना एक चेन आ जाती है पूरी आईपी की, नो आईपी की चेन आती है, अगर तुम वीपीएन यूज करते हो तो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे और जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसमें सिर्फ एक आईपी का डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे नो आईपी का डिफरेंस आता है, प्लस इसमें आईपी बाउंसिंग होती रहती है, आईटी
समझा।
रॉन्ग्स होती रहती है, चेंज होती रहती है धीरे धीरे।
ओके
तो अगर कोई हैकर या कोई भी अगर सिक्योरिटी एजेंसी तुम्हें ट्रैक करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना।
ओके ओके
लेकिन टोर में एक ग्लिच भी है कि इसकी विंडोज कभी कभी ट्रैकिंग अलाउ कर देती है, मतलब अलाउ कर मतलब कर नहीं देती है, वो ग्लिच है जिसकी वजह से हो जाता है। कभी कोई
ओके
विंडोज का साइज बड़ा छोटा कर दे, जिस तरह टोर खुला है उसको जस्ट वैसे यूज करें तो बेटर रहेगा। और ऐसा ना हो कि तुमने मोजिला भी खोला है और साथ में तुम टोर भी खोल लो, तो ये हो सकता है कि वो मोजिला का डेटा कोई अगर एक्सेस कर रहा है उस वक्त तो मोजिला का डेटा भी निकाल के ले जाएगा। तो ये
ओके
थोड़ा ध्यान रखना होता है कि टोर के टाइम सिर्फ टोर ही चलाना।
ओके ओके चलेगा। तो अभी अगर आप, तो ये आपने बताया लाइक डेटा वगैरह सब एक्सेस कर सकते हैं, हैकिंग हो सकता है, बट अभी अभी आपको पता है कि लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जो हमारी डेटा प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी डेटा उनके पास बहुत सारी पड़ी होती है, तो उनसे मतलब इतना सेफ कैसे रहे ये ऑनलाइन वर्ल्ड में? क्योंकि मेरे को क्या लगता है, देखो एट द एंड सब एग्री करते हैं कि प्राइवेसी एक मिथ है, तो बट फिर भी एट द एंड हमको प्रोटेक्ट तो रहना ही है ना, हमको ऐसा तो नहीं हर एक चीज अपनी ब्रीच करनी है, तो कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में?
प्रोटेक्ट तो मेरे ख्याल से तो अब इतने हम डिजिटल वर्ल्ड में उतर चुके हैं कि अगर हम अपने अकाउंट्स भी डिलीट कर दें तो भी हमारी डेटा उनके पास है ही।
हाँ
तो गूगल है, गूगल के पास हमारे मोस्टली डेटा है जो हम यूज कर रहे हैं, जीमेल वगैरह जो भी है, प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं, सारी एप्स की इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती है। फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक ही मालिक की सब देन है, वो भी उसके पास जाता है सब डेटा। तो या तो ये सिचुएशन है तुम इस डिजिटल वर्ल्ड से आउट हो जाओ, तुम फेसबुक यूज करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद कर दो।
वो बात है।
मोस्टली जो हैकर्स हैं वो इस पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। तुम्हें स्नोडन, केविन बैटन नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे, ना इनका कोई खुद का ब्लॉग है।
अच्छा मतलब
उन्हें पता है कि सिक्योरिटी किस तरह ध्यान रखने रख सकते हैं।
तो ये ऑन मतलब ठीक है, मैं फेसबुक और गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब फॉर एग्जांपल कोई हैकर है जो मेरे को हैक करना चाहता है, तो मैं उससे कैसे सेफ,
अच्छा, उससे कैसे सेफ हो जाएगा?
मेरे मतलब इंस्टाग्राम
तो
अकाउंट हैकर है, जैसे मेरा क्या हुआ, मैं अगर आपको अपना केस बताऊं, मेरा 2 दिन पहले ही जीमेल का अकाउंट हैक हो गया, हैक नहीं, किसी ने लॉग इन किया था यूएस में, ठीक है, तो मेरे को एक आया, मैंने अपना फटाफट से पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये कर लिया, बट ये आगे भी हो सकता है, तो वो कैसे हम लोग करें सिर्फ, एंड मैं
हाँ,
खुद भी
वो
शॉक था
मैं
वो।
बताता हूँ। वो जो एक्चुअली तुमने शायद एक्टिविटीज में देखा होगा जाके कि मेरा अकाउंट कहाँ पे लॉगिन है।
नहीं, मेरे को
हाँ,
वो आया था लाइक
तो
यूएस में किसी ने आपका अकाउंट लॉगिन किया।
अच्छा, तो सबसे बेटर ऑप्शन तो होता है कि ये टू स्टेप ऑन कर लो, तुम टू
वो ऑन था।
स्टेप वेरिफिकेशन, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना लो। प्लस एक लोग क्या मिस कर देते हैं कि जैसे अकाउंट रिकवरी का होता है ना, उसमें ऑप्शन वाली चीज वो जनरली छोड़ देते हैं कि ऑप्शन रिकवरी ईमेल छोड़ देते हैं कि इसको क्या भरें, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब उनका कभी ऐसा सीन हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि कैसे करें। मैं बोलता हूँ कि सिक्योरिटी क्वेश्चन तो रखा होगा, बोलते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन तो छोड़ दिया था उस वक्त, रिकवरी ईमेल भी नहीं रख पाते हैं कुछ। तो बेटर होगा जितने ऑप्शन तुम्हारे रिकवरी के हैं तुम उतने रिकवरी के ऑप्शन ले लो, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर लो। बाकी आई डोंट थिंक कि इनके अलावा और कोई ऐसा होगा। बाकी तुम ये कर सकते हो कि टाइम 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 टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहो। अब शायद लोग ये पसंद नहीं करेंगे कि कौन याद रखेगा बार बार पासवर्ड। तो बस
चलेगा।
एक और होता है कि तुम अपने ब्राउजर में पासवर्ड सेव ना करो, अपने मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आता है कि सेव पासवर्ड वो मत अलाउ करो। अगर पासवर्ड याद रख सकते हो और हमेशा लॉग इन कर सकते हो तो सही है, वरना पासवर्ड सेव मत करो, कुकी आराम से स्निफ हो सकती है ब्राउजर में से। यही
चलेगा।
कुछ
तो
प्रिकॉशन थे छोटे
ये
मोटे।
आप जो भी सुन रहे हो, आप ये जो भी मेथड्स भाई बता रहे हैं, टीएस भाई बता रहे हैं, वो ध्यान पे रख सकते हो एंड आप सेफ हो सकते हो। तो अभी आपने एक करंटली बुक भी लिखी है, बुक का नाम क्या है वैसे?
हाँ, बुक का नाम है द अनलॉकिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब
तो
जो
आपने
लोगों ने मतलब काइंड ऑफ या
बोलिए बोलिए।
जो काइंड ऑफ ये आइडिया आया था कि मतलब जो लोगों ने ट्रांसपेरेंट को सिस्टम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा है, तो उसी से एक ट्रिगर होके मैंने ये नाम सोचा कि द अनलॉकिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, की ट्रांसपेरेंसी को अनलॉक किया जाए।
तो आप ये लाइक आपको आइडिया कैसा है कि मेरे को ये बुक लिखनी चाहिए? और आपने जो फर्स्ट स्टेप क्या लिया, लाइक आपने जब बुक लिखने गए तो आपने कौन सा फर्स्ट स्टेप लिया?
रिसर्च सबसे पहली चीज थी, रिसर्च करना।
ओके
मैंने कभी पहले बुक नहीं लिखी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे होता है, ऑथर क्या होता है, कितना उसको रिसर्च करना होता है, क्या होता है सब कुछ।
ओके ओके
तो सबसे पहले तो मैंने वही किया कि रिसर्च किया कि मैं किस किस हद तक कंटेंट डाल सकता हूँ।
ओके
पता चला कि मैं डायरेक्ट चीजें उसमें डाल देता हूँ और बाद में उन्होंने बोला कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वॉलेट हो रहे हैं, डिलीट कर दिया। जैसे अमेजन ने भी ये किया हुआ है, अमेजन ने मैलिशियस कॉन्टेंट बोल के वहां से टेम्परेरीली ब्लॉक किया हुआ है, बोल रहे
ओके
हैं कि कंटेंट वगैरह थोड़ा चेंज कर दो। जो सेक्शंस है उन्होंने बोले हैं कुछ सेक्शंस हटाने को, कि वो सेक्शंस हटा दो तो तुम्हारी बुक वापस से डाल देंगे स्टोर पे। तो
ओके
अभी मैंने वो सेक्शंस नहीं हटाए, मैंने क्या था कि अब बुक में कुछ वापस से छेड़खानी करूँ। तो अभी प्ले
ओके
स्टोर पे अवेलेबल है और प्ले स्टोर ने अब तक कुछ नहीं बोला है, तो दैट्स फाइन है फॉर मी। एक
ओके
जगह
ओके
है अवेलेबल, दैट इज ओके। तो
ओके
सबसे पहले चीज तो दिमाग में यही आई थी कि इंस्टाग्राम चल रहा था सही, और काफी लोग टेलीग्राम पे भी हम क्लासेस ले ही रहे थे, हैकिंग क्लासेस शुरू हो चुकी थी हमारे टेलीग्राम पे। तब भी कुछ लोग बोलते थे बार बार कि कैसे स्टार्ट करें, एक पूरा रोड मैप तैयार करके दो और हमें स्टार्टिंग से सीखना है, बिगिनर्स के लिए एकदम बेसिक से बताओ कैसे कैसे करना है। क्योंकि जो क्लासेस होती थी ना उसमें क्या होता कि तुम्हें 2 दिन में ना बेसिक्स कवर अप किया जाता था, तो 2 दिन में शायद हर बच्चा ना कर पाए बेसिक्स। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चे के पास मटेरियल हमेशा के लिए रहे और वो जब चाहे उसको एक्सेस कर पाए। क्योंकि क्लास में क्या होता था कि 2 दिन के बाद नया टॉपिक आता था और शायद वो बच्चा ग्रैब नहीं कर पाता था तो वो पीछे छूट जाता था, और एक बार
ओके
पीछे छूट जाए तो फिर वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन मारता है कि भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो
ओके
बेटर था कि एक ऐसी चीज बनाऊं कि लोगों के पास हमेशा रहे, जब वो चाहे पढ़ सके और एकदम बेसिक से स्टार्ट हो और उसको कंफर्टेबल हो पढ़ने में। कंफर्टेबल
ओके
कि मैंने ज्यादा वोकेबलरी वाले वर्ड्स यूज नहीं किए उसमें, जिनको समझना है, एक नॉर्मल जो इंग्लिश बोलते हैं वो यूज किया। प्लस रिसर्च इतनी की एक होता है कि जो नॉर्मल हैकिंग बुक जैसे मैंने जो भी पढ़ी है तो उसमें क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, बस
ओके
बता देते हैं तरीका कि ऐसे ऐसे होगा, वैसे ऐसे होगा, और जस्ट छोड़ देते हैं काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग बता के। तो
ओके
इस बार मैंने क्या किया, मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया, उसका स्क्रीन शॉट लिया और डाल दिया। मतलब एक एक कमांड जो डाल रहा हूँ और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका स्क्रीन शॉट लेके मैंने बुक में डाला है, काइंड ऑफ पूरी इंफोग्राफिक्स भर दी है मैंने बुक में,
ओके
कमांड्स एंड रिजल्ट। तो मतलब शायद ही किसी को दिक्कत होगी कि भाई इस कमांड के बाद ये रिजल्ट आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा है, तो मैंने
अच्छा
हर चीज मेंशन किया, इमेजेस बहुत डाली हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
ओके ओके
तो एक जो भी कोई सीखना चाहता है तो एकदम बेसिक से उठा के एकदम लैंग्वेज सिखाइए पहले तो, नॉर्मल कमांड्स वाली, फिर पूरा एक्सप्लोइट्स बनाने सिखाए हैं, मेटास्प्लोइट पूरा सिखाया, वेबसाइट हैकिंग सिखाई है, एंड्रॉइड हैकिंग सिखाई है। तो काइंड ऑफ एक बंदा जो स्टार्ट करना चाह रहा है हैकिंग, वो बिगिनर टू इंटरमीडिएट बन सकता है उस बुक को पढ़ के।
ओके एंड तो अगर आप जो सुन रहे हो, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप जा सकते हो प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो, मैं प्रोवाइड करूंगा लिंक
प्ले स्टोर पे
डिस्क्रिप्शन में, आप
अवेलेबल
देख
है अभी।
सकते हो। ओके तो अभी आपकी ये जो बुक का हो गया आपके लाइक सही क्या, मैं खुद आपसे वो लाइक बुक का आपने जब मैंने देखा लाइक आप बुक भी लिख रहे हो तो मैं कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गया आपसे। ओके एंड तो
हाँ,
अभी
और
जैसे
लकीली इतना अच्छा हुआ था कि उस
ओके
वक्त तो
ओके
दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ उतारे थे, तो उस वक्त ना मेरे को इतना अंदाजा नहीं था उसका एक्सक्लूसिव राइट का। उसमें क्या होता है कि तुम एक टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे कोई एक प्रोडक्ट रख, अगर सेम प्रोडक्ट है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो।
ओके
तो मैंने क्या किया, दोनों पे एक साथ उतार दिया, अमेजोन पे और प्ले स्टोर पे। तो कुछ टाइम बाद अमेजोन का मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा यही सेम प्रोडक्ट प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और उन्होंने बकायदा लिंक भेज दिया मेरे को मेरी ही बुक का। तो
ओके
मेरे को एक जगह से फिर हटाना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरे को अमेजन पे डालना पड़ रहा है, उधर से ऑफ करना पड़ा, फिर अमेजन पे अगर हो गया काम तो फिर प्ले स्टोर पे स्विच करना पड़ा जो प्ले स्टोर पे चाहते हैं, तो ये थोड़ा करना पड़ा। और जैसे ही हम दोनों प्लेटफॉर्म पे, शायद अमेजन पे तो 3 दिन में और प्ले स्टोर पे 5 दिन में हम बेस्ट सेलर बन चुके थे स्टार्टिंग में। रिव्यूज
अच्छा
बहुत अच्छा है बुक के, लोगों को बहुत पसंद आई है बुक,
तो कितने
लोग
लोगों
सेकेंड
ने लाइक
एडिशन भी मांग रहे थे।
ओके तो आपकी जो बुक था मतलब आपका लाइक मतलब मैं बेसिकली बुक का आपका प्राइसिंग का जो था तो उसमें से आप मतलब कैसे आपकी अर्निंग होती है बुक के अगर हम लोग देखें तो।
अभी मैंने कोई भी मार्केटिंग एजेंसी हायर नहीं किया है या कोई भी ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की है,
नहीं नहीं
तो और
मतलब
पहले
मतलब मेरा मतलब था फॉर एग्जांपल बुक में आपने कोई पब्लिक नेम को
सुगुरिटी
किसको रखा या किसको रखा
नहीं नहीं
या कोई रॉयल्टी मिलती है या
नहीं
क्या होता है। ओके मतलब आप
हाँ, अमेजन का क्या होता है कि अमेजन खुद पब्लिशर होता है, जो अमेजन किंडल होता है वो खुद एक पब्लिशिंग मतलब एंटिटी है, तो वो खुद पब्लिश करता है, तुम्हें एक आईएसबीएन भी प्रोवाइड कर देता है। और मैंने सबसे पहले अमेजन पे पब्लिश किया और अमेजन ने आईएसबीएन दिया, उस आईएसबीएन को यूज करके मैंने प्ले स्टोर पर पब्लिश किया, तो काइंड ऑफ दोनों जगह पब्लिशर को मेरे को हायर करना ही नहीं पड़ा पब्लिश करने के लिए। और पेपर बैक वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ई बुक है, तो ऐसे कोई मेरे को प्रिंट वाली भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में मैंने प्राइस भी थोड़ा सोच के रखा कि लोग जैसे ही ना 200 से अप होता है ना, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा आ जाता है कि यार प्राइस थोड़ा महंगा हो गया, तो मैंने उसी को सोच के प्राइस थोड़ा कम रखा, 179 प्राइस कर दिया। वो
अच्छा
थोड़ा कम था जितना टाइम लगा था सब कुछ बनाने में, लेकिन दैट्स फाइन फॉर मी,
ओके
179 भी बहुत था।
तो अभी आपका ये बुक का हो गया। अभी आपने लाइक अपने इंस्टाग्राम पे बताया कि आपको एक इंटर्नशिप मिली डीआरडीओ में, तो आपको इंटर्नशिप कैसे मिली? क्योंकि डीआरडीओ एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो आपको इंटर्नशिप वहाँ पे कैसे मिला? एंड मतलब आपने क्या लिया, कॉलेज की तरफ से गए आप लाइक आपने खुद से गए आपने, एंड आपने क्या काम किया इंटर्नशिप में, मतलब इंटर्नशिप आपको किस चीज में मिली?
एक्चुअली जब मैं हैकिंग सीख रहा था तो साथ साथ में क्रिप्टोग्राफी भी सीख लिया था मैंने, क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी किया था, तो क्रिप्टोग्राफी मैंने सीख लिया था। तो तभी मेरे को मालूम हुआ कि जो डीआरडीओ दिल्ली है वो क्रिप्टोग्राफी का ही सेंटर है, मतलब वहां पे बेसिकली क्रिप्टोग्राफी वाली चीजें डेवलप होती हैं। तो मैंने जस्ट उनकी उनकी एक्चुअली ईमेल लैब, वो लैब्स होती हैं जिन पे ईमेल क्लियर होते हैं ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर, तो उन्हें ईमेल कर सकते हो अपना रिज्यूम में अपनी एप्लीकेशन। तो डीआरडीओ में जाने के कुछ ही तरीके होते हैं, या तो तुम आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, या फिर तुम्हारा डीआरडीओ के अंदर कोई रेफरेंस हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह रहता हो, या फिर तुम्हारा रिज्यूम इतना स्ट्रांग हो कि वो खुद तुम्हें कर लें, क्योंकि सारे रिज्यूमे चेकलिस्ट तो होते हैं, तो चेक किए जाते हैं वहाँ पे। तो
अच्छा
अगर
चेक
तुम्हारा
होते हैं।
रिज्यूमे इतना अच्छा हो जाए कि तुम आईआईटी एनआईटी वाले से टक्कर रहिए से पीछे करके आगे आ जाओ, या फिर रेफरेंस वालों से आगे आ जाओ, तो वही था। मैंने अपना रिज्यूमे को फॉरवर्ड किया उस वक्त तक, तो मेरे पास हम दो इंटर्नशिप में ऑलरेडी कर चुका था उस वक्त तक, तो उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे शायद उन्होंने, मैंने कम्युनिटी का भी लिंक डाला था, मे भी उन्होंने चेक किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, उस मैंने डाल के छोड़ दिया था, उम्मीद तो कुछ नहीं थी कि आएगा या नहीं, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कि ऐसे आईआईटीएंस एनआईटीएंस भी जाते हैं और रेफरेंस भी वाली भी चीज होती है, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वही रेफरेंस वाले हैं वही चले जाएंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। खैर लकीली एक शाम को मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, उनका एक साइंटिस्ट एफ ग्रेड का था, एफ ग्रेड का साइंटिस्ट था, उनका मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और एक हफ्ते के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, एनओसी बना के भेज देना, कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो करनी थी। बस फिर अच्छा लगा कि हाँ हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग आ गई थी, 2 महीने ट्रेनिंग थी। तो जब हम गए तो हमें चॉइस दी गई थी कि तुम किस में सीखना चाहते हो, क्रिप्टोग्राफी में भी बहुत सारे पार्ट थे, तो ये हमें बोला कि या तो तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज करो, माइक्रो कंट्रोलर में भी आगे क्रिप्टोग्राफी करनी थी, और ठीक था मेरे को अच्छा लगा। और एक था बीएचडीएल यूज करके तुम क्रिप्टोग्राफी बना सकते, क्रिप्टोग्राफी कर सकते थे, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा। फिर जब हमें इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट इसका दे रहे थे कि ये ऐसे होता है, तो मेरे को थोड़ा हार्डवेयर वाली, माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा हार्डवेयर वाला पार्ट हो जाता है, तो मेरे को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आया। बाकी बीएचडीएल सर ने बोला कि ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है और बाकी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज से बहुत अलग होती है, और हार्डवेयर की इसमें सबसे टफ लैंग्वेज है, तो मेरे को थोड़ा चैलेंज सा लगा कि ये करने का है अपने को। मैंने बोल दिया कि ये हम बीएचडीएल करेंगे और इसी में करेंगे। बाद में 2 महीना पूरा बीएचडीएल की, तो बीएचडीएल की प्रोग्रामिंग सीखी, फिर FIFO बनाए, काफी सारे प्रोग्राम्स बनाए छोटे छोटे, फिर और भी प्रोग्राम्स बनाए, फिर एक एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक्चुअली शायद तो समझ नहीं आएगा लोगों को अगर ऐसे बोल दूंगा, जो हमारा जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं ना, हम अपने यूएसबी पेरिफेरल्स यूज करते हैं,
नहीं ये
इस तरह से
थोड़ा
डेटा
आप
जाता है,
एक्सप्लेन
बिट
कर
बाय
दो।
बिट डेटा जाता
ओके
है।
ओके
तो उससे रिलेटेड थोड़ा था, फिर उसी को क्रिप्टोग्राफिक वे में किस तरह भेजा जाए, उसको इनक्रिप्ट करके कैसे भेजा जाए, बाद में वो डिक्रिप्ट कैसे हो, तो वही सब चीजें थी जो हमने 2 महीने में सीखी।
ओके
जर्नी काफी अच्छी थी, मजा आया, काफी सीखने को मिला, साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के।
ओके तो अभी ये हो गया आपके लाइक इंटर्नशिप से लेके अभी अगर मैंने आपके देखा है, आपके जितने भी इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं आपके, मतलब स्पेशली स्टोरी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़े हो, तो आप कुछ बता सकते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में?
हाँ, ये तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा है इसमें।
ओके
स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं कि मतलब एकदम भगवान से
ओके ओके
जुड़ गया हूँ,
समझा समझा
ऐसा कुछ नहीं। मतलब जस्ट आई बिलीव ऑन एक्सपीरियंसेस एंड द फैक्ट जो रियलिटी है।
ओके okay.
साइकोलॉजी पे भी नहीं रहना, साइकोलॉजी पे ट्रस्ट करना भी नहीं है, क्योंकि हर किसी बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है। और साइकोलॉजी लोग बेसिकली जो उनका प्लेजर होता है उससे बना देते हैं, अपनी खुद की साइकोलॉजी, जो उनको अच्छा लगता है उसकी खुद की साइकोलॉजी बना देते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है और एक एक्सपीरियंस क्या है, उसी के बेस पे हमें अपनी खुद की चीजें करनी चाहिए या जो भी है करना
ओके
चाहिए। तो एक्चुअली स्टार्टिंग तो शायद इसकी नाइन्थ क्लास में हो चुकी थी मेरी। नाइन्थ क्लास
ओके
से ये थोड़ा इंटरेस्ट था, तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग में। तो जो भी था हमारा, गीता महाभारत वगैरह जो भी था, ऐसी बुक्स मैंने पढ़ चुका था पहले। फिर
ओके
12th के बाद मैंने जो अपने पुराण वगैरह हैं, वेद वगैरह हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। वो भी पढ़
ओके
लिए काफी हद तक, अभी से खत्म नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे, तो
हाँ
उनको पढ़ा। काफी चीजें ऐसी देखने को मिली कि लोग ना अंधाधुंध पे बस विश्वास किए जा रहे हैं, वो रियलिटी जानते ही नहीं है। कामा
ओके
सूत्र पढ़ा मैंने, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली कि लोग बस कुछ भी समझते हैं उसको, वो ऐसी चीज नहीं है।
ओके
उसके बाद एक्चुअली वो चीजें कुछ ऐसी थी कि मतलब जो भी सब मैंने ये पढ़ा वो कुछ इतना ट्रेडिशनल था कि शायद आज के टाइम में उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
ओके ऑफ
क्योंकि हम सब जॉब्स करते हैं और
कोर्स
हमारा एकदम लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। तो फिर कुछ ऐसी चीज ये थी कि जो आज के टाइम से रिलेटेड हो, तो काइंड ऑफ मेरे को जो जैसे जैसे सतगुरु हो गया, या फिर कुछ एक फिलोसफर्स हैं वो हो गए, जैसे प्लूटो हो गया, तो ये काफी अच्छे लगने लगे। तो मैंने फिर और बुक्स पढ़ने शुरू किए, और बेसिकली मैंने सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स ज्यादा पढ़ी।
ओके
एक डेल कार्निंग करके ऑथर है,
यस यस
वो भी
डेल
बहुत अच्छा
कार्नेगी
लिखता है। हाँ,
ओके ओके
डेल कार्निंग हो गया, रोबिन शर्मा हो गया, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं ये।
ओके
एक ऐसी कुछ बुक्स थी जैसे एज अ मैन थिंक केयर, हुल क्राई व्हेन यू डाई, इनर इंजीनियरिंग, काफी अच्छी बुक है। तो काफी
ओके
ऐसी चीजें हुई कि मतलब पढ़ लिया इतना काफी कुछ कि फिलोसफी में इसमें इंटरेस्ट आ गया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में और चीज में।
ओके
तो काइंड ऑफ ये सॉर्टेड वाली चीजों की फीलिंग देता है कि हाँ, आई एम सॉर्टेड इन माय लाइफ, और कोई चीज मेरे को परेशान नहीं करती है, मेरे को किसी चीज का डिप्रेशन नहीं है, आई एम सॉर्टेड इन माय लाइफ।
ओके तो ये चेंजेस आपके स्पिरिचुअलिटी में लाए. तो आप देख सकते हो लाइक स्पिरिचुअलिटी ने लाइक मे भी आपको एक बूस्ट दिया और सेल्फ अवेयर हो गए हो आप बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस.
हाँ, थोड़ा ये रहता है कि ना मोटिवेटेड रहते हो हमेशा, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डिमोटिवेट
ओके
तो कभी होता ही नहीं हो, डिप्रेशन नहीं आता है। अभी
ओके
जैसे आजकल की जनरेशन होगी डिप्रेशन में डूबे जा रही है, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, बंदी बाग गई, ये हो गया, तो इन सबसे परे है, इन
ओके
सबसे फर्क नहीं पड़ता।
ओके
अपना जो काम है मेरे को वो करने का है, बाद की चीजें बाद में देखी जाएंगी।
ओके मतलब बेसिकली आप अभी प्रेजेंट पे फोकस करो ज्यादा.
ऑब्वियसली अभी प्रेजेंट फोकस करूंगा ना,
ओके ओके तो
जिस
अभी
टाइम में
आप
जो काम करना चाहिए वो करेंगे।
ऑफ कोर्स ओके तो अभी मेरे को लाइक मैं एक अगर आपको बताता हूँ तो मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ. ओके लाइक मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है. मैंने आप लाइक हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड क्रशिंग इट अभी जस्ट मैंने खत्म की. तो मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा सही लगता है. मतलब बहुत नॉलेज मिलता है हमको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बुक से. एंड मैंने देखा है कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हो. ओके तो आप कौन सी बुक्स रेकमेंड करोगे एंड करेंटली आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो?
रिकमेंडेशन तो आई थिंक इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए, मैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डिफरेंट है, मे बी लोगों का डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि
ओके
मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स और बिजनेस बुक्स अच्छी लगती हैं। मैं
ओके
थोड़ा स्टार्टअप्स वाली थोड़ी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, या मैगजीन्स पढ़ लेता हूँ, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स ज्यादा पढ़ता हूँ। मेरे को फिक्शनल वाली नहीं पसंद बिल्कुल भी, जो इतने स्टोरी
सेम
बेस्ड
हियर
होती हैं मैं वैसे कभी नहीं पढ़ी मैंने।
ओके
बेसिकली मैं सेल्फ डेवलपमेंट वाली ज्यादा पढ़ता हूँ। उसमें भी यही हो गया, एक तो डेल कार्निंग हो गया, इसकी बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, रोबिन शर्मा है, बहुत अच्छी बुक्स लिखता है। सतगुरु
ओके
की
ओके
मैंने शायद दो पढ़ ली हैं, ये भी बहुत अच्छी लिखता है। बाकी फिर बिजनेस बुक्स में लीन स्टार्टअप है, 0 to 1 है, और भी
ओके
काफी सारी हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ उन्हीं बुक्स को बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, बाकी के बारे में जो मैंने नहीं पढ़ा तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता कैसी होंगी।
ओके चलेगा चलेगा।
बाकी मैं कुछ पोस्ट तैयार कर रहा हूँ, जो मैंने बुक्स पढ़ी है उनके रिव्यूज में डालने वाला हूँ अपने पोस्ट में, तो उन पे काम कर रहा हूँ अभी।
ओके okay, तो जरूर से जो भी सुन रहे हैं स्टे ट्यून्ड रहेगा। ओके okay. तो अभी अगर हम लोग बात करें आपके इंस्टाग्राम पे, आपका बहुत सही, मतलब मैंने देखा है आप लाइक आपकी ग्रोथ बहुत सही लग, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं लाइक अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें, क्योंकि देखो हम लोग वैल्यूएबल कॉन्टेंट डालते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जो भी हम लोगों ने देखी है बट फिर भी ग्रो नहीं हो पा रहे, बट आपने 2018 में स्टार्ट किया इतना अच्छा आप ग्रो कर गए, तो कैसे कोई भी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ ले सकते हैं।
नहीं, मेरे ख्याल से एक डिसेप्शन है। वैल्यूएबल कंटेंट, एक्चुअली मैंने भी ये चीज, इस रिसेप्शन को थोड़ा सा फेस किया था कि मेरा इंस्टाग्राम शायद अभी अटक गया था बीच में, क्योंकि तो
ओके
मैं
हाँ
भी इनएक्टिव हो गया था 1.5 2 महीने के लिए, तो
हाँ
काइंड
बराबर
ऑफ 32 32 के बीच में अटका रहा कुछ 1 महीने, और अब जाके मैंने पूरा कंटेंट स्ट्रेटेजाइज किया है, वापस से पूरा फोकस इस पे डाला है, ज्यादा फोकस इस पे डाला है बल्कि, और अब ये ग्रो करना शुरू कर रहा है सही से।
ओके okay.
तो सबसे एक्चुअली जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है कि अगर तुम्हें अकाउंट बढ़ाना है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से कंटेंट सबसे पहली चीज है, कंटेंट इज द किंग।
ओके
अगर तुम सोच रहे हो कि कंटेंट मेरा वैल्यूएबल है, मे भी तुम अपनी साइड से सोच रहे हो कि वो वैल्यूएबल है, तुम एक बार अपने फॉलोअर की तरफ से सोचो कि क्या वो वैल्यूएबल है उसके लिए या नहीं, क्योंकि अगर वो वैल्यूएबल है भी ना, है भी, तो उससे शायद वो फील नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता
ओके
है कि हम जब इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हैं ना, तो तुम्हारे पोस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उस बंदे की स्क्रोलिंग रुकवा दे बीच में, और तुम्हारी पोस्ट को पढ़ने पे मजबूर कर दे,
ओके
पोस्ट ऐसी होनी चाहिए।
ओके
तो बेसिकली लोग, हमें इस पे यूआई पे बहुत काम करना पड़ता है कभी कभार, यूआई
ओके
पे, ताकि मतलब लोगों का फोकस, अटेंशन करना पड़ता है उनका, अटेंशन को।
ओके ओके
तो कंटेंट सबसे अच्छी चीज है, तो चलते कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए। मान लो तुमने कंटेंट अच्छा डाला है लेकिन यूआई इतना अच्छा नहीं डाला है, तो कल तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा यूआई की वजह से, तो छोड़ देगा, पढ़ेगा भी नहीं। अगर तुमने यूआई अच्छा डाला है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं डाला, तो समझ जाएगा कि ये अकाउंट कंटेंट ही अच्छा नहीं डालता, वो मे बी अनफॉलो भी कर सकते हैं वहीं से।
ओके ओके
कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और एक स्मूथ यूआई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना होता है, एकदम सिंपल रखना होता है, थोड़ा प्रोफेशनल वाली चीजें भी रखनी होती है। मेरे को तो क्या होता है ना कि एकदम रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है अपने पोस्ट के, तो
ओके
मैं क्या करता हूँ, हर तीन पोस्ट के बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता हूँ अगर रिजल्ट नहीं मिलता है।
ओके
मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ अपने अकाउंट पे, तुम अगर देखोगे तो तीन पोस्ट एक तरह की मिलेंगी, तीन पोस्ट एक तरह की मिलेंगी, तीन पोस्ट अलग तरह की मिलेंगी। मैं
ओके ओके
बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ कंटेंट
ओके ओके
पे भी, एक नीच पे भी बहुत रिसर्च करनी होता है। ये थोड़ा मैंने नोटिस किया है कि अगर नीच से थोड़ा हट जाते हो तो मे भी फॉलोअर्स थोड़े अनफॉलो करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि ना, हैकिंग तो ठीक है, मैं धीरे धीरे थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में, टेक्नोलॉजी पे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, फॉलोअर्स वो नहीं चाहते, मतलब मेन फॉलोअर्स तो चाहते हैं, लेकिन जो नए फॉलोअर्स आते हैं ना, वो फॉलो करके वापस से अनफॉलो कर देते हैं अगर उनको हैकिंग कंटेंट नहीं मिलता है।
ओके ओके
तो मेरे ख्याल से एक ये फैक्टर भी होता है कि तुम अपने नीश से कनेक्टेड रहो, उसी से रूटेड रहो। बाकी मैं
ओके
कोशिश करता ही रहता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंड करने की।
तो मतलब लाइक गुड कंटेंट डालो आप, एक्सपेरिमेंटेशन करो एंड देखो कौन से सामने वाले को
एक्सपेरिमेंट
पसंद
करो,
आ रहे हैं, अटेंशन
हैशटैग्स
गेम ग्रैब
भी
करो।
होते हैं, हैशटैग्स
ओके तो ये हो गया मतलब
होते हैं, हैशटैग्स को यूज करना। बाकी एंगेजमेंट सबसे, एक पेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी चीज होती है एंगेजमेंट, जिससे उस पेज का फ्यूचर डिपेंड होता है। हमारा तुम
ओके
कंटेंट तो अच्छा दे रहे हो लेकिन तुम्हारी ऑडियंस ही एंगेज नहीं है तुमसे, तो कोई फायदा नहीं है। कोई प्रमोशनल एक्टिविटी भी करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसका।
ओके
तो अपने डीएम्स का रिप्लाई दो, कमेंट्स पे भी रिप्लाई दो, कमेंट्स कोई करता है उसको लाइक करके रिप्लाई दो, सिर्फ रिप्लाई मत दो। मतलब ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कि मतलब एडमिन इतना बिजी है कि वो रिप्लाई देगा ही नहीं, भले तुम बिजी हो, थोड़ा टाइम निकाल के उनको रिप्लाई दो, थोड़ा लेट दो लेकिन एंगेजमेंट बना के रखो।
ओके
ये थोड़ा करना पड़ता है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए,
चलेगा।
एक ऐसी बहुत मतलब एफर्ट डालने पड़ता है, एटलीस्ट दिन के 5 से 5 घंटे तो जाते ही हैं इसमें, कंटेंट
ओके ओके
बनाने में, हैंडल वैंडल करने में, स्टोरी स्टोरीज डालना बहुत ही जरूरी होता है, एटलीस्ट दिन में 5 स्टोरीज तो डालनी होंगी, वरना व्यूज कम हो जाते हैं धीरे धीरे। बाकी फिर और फ्रॉड्स एंड स्कैम्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रोज इतने डीएम्स आते हैं जो आस्क में वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी बोट्स जो होते हैं वो मैसेज कर देते हैं, तो थोड़ा फ्रॉड्स वगैरह से भी थोड़ा दूर रहना पड़ता है। कुछ बिजनेस डील्स आती हैं जो फेक होती हैं, उनसे भी थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तो
ओके
इंस्टाग्राम चलाने में काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक्चुअली मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, और जैसे लोग बोल रहे थे कि भाई सेकंड बुक कब आएगी, सेकंड बुक कब आएगी, तो एक्चुअली हैकिंग की सेकंड बुक तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम ग्रोथ की एक बुक मैं अभी लिख रहा हूँ, स्टार्ट की है, तो वो आ सकती है। और अगर मैं रिवील करना चाहूँ तो बुक का नाम होने वाला है कि गेम्स ऑफ इंस्टाग्राम, इसी तरह से रिलेटेड कुछ करके नेम होगा।
ओके ओके तो
तो इसलिए मैं काम कर रहा
रेडी
हूँ कि
रहिए,
एक
एक बुक आई है
अगर
भाई की
ना
तरफ से। ओके
अगर कोई अपना इंस्टाग्राम 0 फॉलोअर्स से ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो सब मैं उसमें बता रहा हूँ। अभी जो तो रिसर्च चल रही है, मैं खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो वो भी सारे पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ किससे क्या
ओके
हुआ।
मीन्स
अभी जैसे
लगभग
मैंने
आपको लाइक
रिसेंटली,
एक मतलब ईयरली तो
हाँ
एक आपको टाइम लग जाएगा बुक लॉन्च करने में, लाइक बिकॉज रिसर्च करना, उसके बाद स्ट्रेटजीज
रिसर्च
बनाना।
करना, हाँ मेरे ख्याल से 3 महीने तो रिसर्च में चले जाएंगे। अभी तो 3 महीने का, जैसे जैसे मैं अकाउंट बढ़ाता जाऊंगा, नई नई चीजें पता चलती जाएंगी, तो टाइम तो लगेगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीजें जल्दी हो जाए।
ओके ओके चलेगा, मैं भी वो बुक जरूर से पढ़ूंगा, सबसे पहला शायद मैं ही हूँ कस्टमर।
हाँ उसमें मैं एकदम कंटेंट शॉर्ट एंड अप टू द पॉइंट रखूंगा, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं, पॉइंट्स में, पैलेट में, सब कुछ टारगेट बहुत शॉर्ट में करने वाला हूँ, और
ओके
एकदम इंफॉर्मेटिव सब कुछ होने वाला है। तो
ओके
इसको ध्यान, अभी जैसे मैंने रिसेंटली ट्राई किया कि कैरोसेल्स बनाने का ट्राई किया, कैरोसेल्स बनाए मैंने, अभी इसमें नोटिस किया कि कैरोसेल्स में हैशटैग्स काम नहीं कर रहे हैं। अब कभी कभार कर देते हैं, कभी तो कर नहीं, और कर भी रहे हैं तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर रहे जितने सिंगल इमेज पोस्ट से कर रहे हैं।
ओके
पता नहीं एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते रहना पड़ता है कि क्रॉसवर्ड्स में क्यों काम नहीं करते हैं, सिंगल पोस्ट में क्यों काम करते हैं। अभी इंस्टाग्राम IGTV,
तो ये सभी आपने लाइक ये सब जो भी आप कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे पेज ग्रो कर रहे हो, आप बुक सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने हैकिंग की है, तो आपने लाइक आप मैं मंथली वाइज या आपने ईयरली वाइज अगर आपने कितना मनी अर्न किया आप बता सको तो बहुत सही हो जाएगा, क्या थोड़ा जो भी लोग सुन रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड प्लस अगर आप समझो कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मार्जिन से ही बता सकते हो।
श्योर, एक्चुअल वैल्यूज तो शायद ही नहीं बताऊंगा।
ओके
एक्चुअली पेज पे अगर टोटल देखा जाए तो आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम माय फैमिली, घर वालों से मैंने शायद पिछले 2 या 2.5 साल से कोई पैसा नहीं लिया है,
ओके
इतना तो खुद से हो गया। तो इतना कि महीने में अगर 25 to 30 K तो कहीं नहीं गए हैं, इतना तो हो जाता है। जितना
ओके
करना चाहो तुम तो उतने पैसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, मेरे को इतनी जरूरत होती है तो मैं इतना ही कमाता हूँ, ऐसे ज्यादा की जरूरत नहीं है मेरे को, तो
ओके
इतने मेरा काम चल जाता है, तो इतना हो जाता है,
ओके
तो
पर
स्टिल
ये
बोर्डिंग हो जाता है कभी कभी। हाँ
ओके मतलब ये मंथली वाइज है।
मंथली अगर देखा जाए तो 25 to 30 K आ जाता
ओके
है,
ओके तो 25।
बाकी अभी हाँ, तो अगर मतलब
ओके
कमाना चाहे तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, और फ्रीलैंसिंग करके और प्रमोशन एक्टिविटीज करके और बाकी चीजों को करके, और ई बुक्स नहीं लिख सकता हूँ मैं अगर चाहूँ, लेकिन
ओके
मेरा काम हो रहा है इतने में तो मेरे को दिक्कत नहीं है।
ओके
बाकी अभी जैसे मेरे को क्रिप्टो में भी काफी इंटरेस्ट है, तो मैं क्रिप्टो माइनिंग भी करता रहता हूँ। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं शुरू किया, इन्वेस्टमेंट तो अभी सिर्फ इधर ही करता हूँ, तो क्रिप्टो माइन भी कर रहा हूँ। तो अभी जैसे पाई है, पाई नेटवर्क है, इसमें माइनिंग चल रहा है, तो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, तो अगर होपफुली कभी ये प्रोजेक्ट उतरता है मार्केट में तो मेरा बहुत फायदा होने वाला है। होपफुली
ओके
अगर ये बिटकॉइन की तरह चलता है, जैसे बिटकॉइन एक बार आया था और लोगों ने इसको मतलब ऐसे से बोला था और फिर अचानक से ही इसने हीट पकड़ लिया था, अगर ऐसा
ओके
होता है तो बहुत अच्छा होगा।
ओके ओके
हाँ तो एक काइंड ऑफ वो मेरा फ्यूचर इनकम है। बहुत ज्यादा इनकम है।
ओके ओके चलिए। तो
बाकी
अभी
जो
आप
फ्रीलैंसिंग है, जैसे फ्रीलैंसिंग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ईबुक्स हो गई मेरी, और यही बेसिक्स हो।
तो टीएस, अभी आपने ये सब बताया, लाइक आपने मनी के बारे में बताया, आपने इंस्टाग्राम के फेम के बारे में बताया, एंड आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, बट आप स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहोगे जो लाइक स्टार्ट कर रहा है, एंड स्पेशली जो 15 से 16 ईयर्स के हैं, जो बेसिकली हैकिंग लाइक वर्ड सुन के ही उनके माइंड में होता है कि मैं कार्डिंग करूँ, मैं ये करूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं आया था एक टाइम पे, बट कैसे, मैं सेल्फ अवेयर बहुत ज्यादा था शायद से, तो इसके लिए मैंने कभी वो चीजें नहीं की, ठीक है, मैं नॉलेज की तरफ गया इंस्टेड ऑफ डूइंग सम इलीगल थिंग्स, ओके, बट बहुत से लोग इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते, सो हाउ लाइक व्हाट मैसेज वुड यू गिव?
मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि अभी टाइम है, तो जितना प्रोडक्टिव हो सकते हो वो जाओ, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीजों को छोड़ दो। और एक अब तो पर्टिकुलर गाइड्स मिल जाते हैं हमें, तो अगर हैकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा उसके फ्यूचर कॉन्सेप्ट को भी देख के चलो कि किस तरफ जा रहे हो तुम, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कौन सी चीजें बुरी हैं। जाना बुरा नहीं है, लेकिन चीजों को जानना कि वो चीजें बुरी हैं या अच्छी हैं वो बहुत जरूरी है। तो
ओके
स्टार्ट करो, और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चीजों को करके छोड़ मत दो, उनको उनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। ये सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं है, अगर कोई प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा है, अगर कोई अपने इंस्टाग्राम भी शुरू कर रहा है, तो उसके लिए भी यही है। अगर उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है तभी ग्रोथ होगी। अगर तुम प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हो तो साइड बाय साइड कोई प्रोजेक्ट करते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। गिटहब से नई नई चीजें बहुत मिलती हैं, ओपन सोर्स है, वहां से निकालते रहो। हैकिंग के लिए भी यही है, गिटहब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वहां से देखते रहो। हैकिंग के लिए तो कितने सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से तुम्हें स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, वो तुम खुद यूज करके देखो, स्क्रिप्ट में चेंज करके देखो क्या नई चीज बन सकती है, क्या क्या नया हम फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, क्या नई क्लास हम और लगा सकते हैं। तो यही है कि जितना एक्सप्लोर कर सकते हो नॉलेज भी कर लो, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तुम्हारे पास और पीयर प्रेशर आ जाएगा, करियर का प्रेशर आ जाएगा। अभी तो खोने के लिए कुछ नहीं है, अभी बस सब तुम्हारे पास है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप ही होगा किसी के पास। तो जितना हो सकता है इस टाइम को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो, बाकी की जो चीजें हैं जरूरी चीजें हैं उनको बाद में कर लेना, उनके लिए बाद में टाइम है। तो अभी जिस चीज पे फोकस करना चाहते हो पहले वो करो, अपने खुद पे सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। टेक्नोलॉजी भी सही है, करते रहो, एक खुद भी एक अच्छा कैरेक्टर बनने पर ध्यान दो, लोगों की हेल्प करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सारी चीजें एक साथ चलती रहनी है। एक अच्छा कैरेक्टर बनाओ, नॉलेज नॉलेज एक नॉलेज वाला कैरेक्टर होना चाहिए, एक हम्बल कैरेक्टर होना चाहिए, लोगों को मिलके भी अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा बंदा था। तो एक काइंड ऑफ यूजफुल एंटिटी होनी चाहिए तुम, और कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेल्फ डिमोटिवेशन वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। हमेशा मोटिवेटेड रहने वाला, लोगों को मोटिवेट करने वाला, और हर हर किसी को नॉलेज दे देने वाला आराम से। एक होता है कि बंदे की बस नॉलेज होती है लेकिन यार उसको पता ना चल जाए इस बारे में, वो नॉलेज नहीं देता उस चीज की। तो एक वैसा थोड़ा माइंडसेट को नहीं रखना, जितनी नॉलेज तुम देते हो उससे ज्यादा दो, आपकी नॉलेज ऑब्वियसली डबल होगी इससे। बाकी कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा चीजों को ग्रैस्प करते रहो, चीजों को नोटिस करते रहो, सीखते रहो। तुम हैकिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें क्रिएटिव बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, हर चीज के डबल ट्रिपल एस्पेक्ट लेके भी चलने होते हैं। तो और सर्टिफिकेशंस भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया है तो थोड़ा सर्टिफिकेशन वाली चीजें भी आ जाती हैं। अगर तुम सीरियसली किसी कोई ऐसे करियर में करियर चाहते हो, कहीं जॉब लेना चाहते हो, तो मे भी कोई सर्टिफिकेशन मांग सकता है। वैसे ये एक फैक्ट है कि 2% ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं और उनको जॉब मिली है, बाकी के जो सब हैं वो खुद सेल्फ टॉट हैकर हैं, और खुद से पढ़ के, खुद से कहीं ब्लॉग वगैरह से, यूट्यूब से सीख के वो हैकर बने हैं।
ओके
ये एक फैक्ट है। हाँ, तो बेसिकली लर्निंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दिस एज। लर्निंग पे फोकस करो, अपने आप को बनाने पे फोकस करो, सेल्फ डेवलपमेंट सबसे अच्छी चीज है इस टाइम पे। सेल्फ डेवलपमेंट अपने कैरेक्टर में करो और अपनी नॉलेज में करो, यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए।
ओके सो थैंक यू टीएस फॉर बीइंग ऑन द जतन शिवरामनी शो, एंड आई होप
थैंक्स ब्रो फॉर दिस
जो
अपॉर्चुनिटी।
भी सुन रहे हैं उनको वैल्यू मिले, एंड जो भी जाके फॉलो करो टेक्निकल सेपियन को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया. ओके एंड मेरे को भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो. ओके एंड मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय.